द्वितीय अध्याय ग्राम भित्तीय उपन्यासों में नारी के विविध रूप। पृष्ठ संख्या 63। प्रास्ताविक। प्राचीन समय से ही ग्राम एवं नगरीय जीवन के संस्कारों में एक मूलभूत अंतर दृष्टिगोचर होता है। रहन सहन, आचार विचार, सोचने का ढंग, प्राथमिकताएं तथा विश्वास अविश्वास की दृष्टि से उभय की जीवन पद्धतियों में असंदिग्धता एक विशिष्टता अंतर उपलब्ध होगा। प्राचीन समय में ग्राम एवं नगर जीवन में क्रमशः लौकिक एवं शिष्ट संस्कृति का प्रभाव परिलक्षित होता था। शिष्ट साहित्य, ललित कलाएं, ज्ञान विज्ञान, राजनीतिक हलचले, इन सब का केंद्र नगर होता था। नागरिक शब्द इसी नगर शब्द से निःसृत हुआ है। ग्रामीण व्यक्ति अपनी लोक संस्कृति के साथ जीता हुआ दृष्टिगत होता था। नगरीय बौद्धिकता से दूर रहने के कारण उसके जीवन में अपेक्षाकृत निश्चलता एवं सरलता के दर्शन होते हैं। अतः नागरिकों की तुलना में प्रायः उसे असभ्य और मूर्ख समझा जाता था। मूर्ख का समान बोधि शब्द गंवार गांव से ही व्युत्पन्न हुआ है। ग्राम जीवन मुख्यतः कृषि एवं प्रकृति पर आधारित होता था, जबकि नगरीय जीवन इससे दूर पाया जाता है। यदि रूपकात्मक भाषा का अवलंब ले तो नगर को हम सुचारू रूप से बनाया गया राज उद्यान कह सकते हैं और ग्राम को नैसर्गिक ढंग से उग आया विपिन या जंगल। प्रथम में एक बुद्धिपूर्वक की व्यवस्था है और दूसरे में स्वयं नैसर्गिक सौंदर्य की छटा। ग्रामीण जीवन में प्रकृति से मनुष्य का संबंध अधिक निकट, प्रत्यक्ष और गहन होता है। ग्रामीण जीवन में नैसर्गिकता की प्रधानता होती है, वहाँ नगरीय जीवन में सभ्यता आरोपित कृत्रिमता के दर्शन होते हैं। न केवल उभय का रहन सहन अलग होता है, प्रत्युत उनकी भाषा और विचारों में भी अंतर पाया जाता है। वस्तुतः इसे दो प्रकार की जीवन पद्धतियाँ कह सकते हैं। पैराग्राफ चेंज। जिस प्रकार संस्कृत तथा हिंदी में नगर शब्द मिलता है, उसी प्रकार अंग्रेजी में उसके लिए सिटी शब्द मिलता है। यह शब्द लैटिन भाषा के सिविटास से बना है, जिसका तात्पर्य नागरिकता से है। सभ्यता के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द सिविलाइजेशन भी इसी से व्युत्पन्न हुआ है। प्राचीन समय में न केवल भारतवर्ष में अपितु विश्व के अन्य देशों में भी ग्रामों की तुलना में नगरों की संख्या कम थी, परंतु इधर औद्योगिक क्रांति के उपरांत दिन प्रतिदिन कस्बे नगर और नगर महानगर की शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं। नगरों की जनसंख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में सन 1901 में नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या का प्रतिशत 10.84 था, जो बढ़ते बढ़ते सन 1981 तक 23.31% हो गया। नगर के विकसित होते जाने की इस प्रक्रिया को नगरीकरण या अर्बनाइजेशन कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज। पृष्ठ संख्या 64। बर्गल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हमें नगरीकरण कहना चाहिए। इसका एक बढ़िया उदाहरण हम गुजरात के वड़ा कबोरी गाँव का ले सकते हैं। पहले यहाँ एक छोटा सा गांव था, परंतु मही नदी पर बांध के हो जाने पर तथा उसके कारण वहाँ थर्मल पावर स्टेशन के स्थापित होने से अब वहाँ एक बहुत बड़ी कॉलोनी बन गई है, जो सभ्यता, शिक्षा, रहन सहन, संस्कार, सुविधाएं आदि की दृष्टि से नगरीयता में परिवर्तित हो गई है। जमशेदपुर का निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है। कुछ एक शताब्दियों पूर्व मुंबई भी केवल मुट्ठी भर मछुआरों की बस्ती थी। पैराग्राफ चेंज। परंतु मिचेल नगरीकरण को नगरीय बनने की प्रक्रिया मानते हैं, जिसमें लोग नगरों की ओर गमन करते हैं और कृषि को छोड़कर अन्य नगरीय व्यवसायों को ग्रहण करते हैं। हम देख रहे हैं कि मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली जैसे महानगर दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। एक दिल्ली निवासी नागरिक ने कभी मजाक में कहा था, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ससुर जब भी ग्रामीण क्षेत्रों की कोई रैली होती है, दिल्ली की जनसंख्या में 5-10 हजार की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि रैली में आए हुए बहुत से लोग वही दिल्ली में ही बसे होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। बम्बई, कलकत्ता आदि शहर बेतहाशा बढ़ रहे हैं। इसके कारण अनेक नई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। वस्तुतः उक्त दोनों प्रक्रियाएं नगरीकरण के ही दो रूप हैं। पैराग्राफ चेंज, यहाँ नगर और नगरीकरण की यह बात इसलिए उल्लेख्य है कि आलोच्य विषय में उपन्यासों में निरूपित नारी जीवन के नाना रूपों को लिया गया है और नारी जीवन के इन विविध रूपों पर ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के प्रभाव स्पष्टतया लक्षित हो रहे हैं। उभय की जीवन प्रणाली भिन्न होने के कारण वहाँ के नारी जीवन में उतना ही अंतर मिलेगा जितना नगरीय और ग्रामीण जीवन व्यवस्था में। उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए तो उषा प्रियंवदा कृत 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास की सुषमा की जो समस्या है वह नगरीय परिवेश की उपज है। सुषमा सुशिक्षित है, कॉलेज में व्याख्याता बन सकती है, अतः उसके कंधे पर अपने परिवार के आर्थिक दायित्व को उठाने की जिम्मेदारी आती है। सुषमा यदि ग्रामीण परिवेश में होती तो प्रथमतः इतनी सुशिक्षित न होती, दूसरे उसका परिवार भी केवल वेतनावलंबी न होता। इस संदर्भ में डॉक्टर पारुकांत देसाई के इस मत से सहमत हुआ जा सकता है। इन्वर्टेड कमापन, वस्तुतः प्रस्तुत उपन्यास में सुषमा की जीवन की जो त्रासदी है उसके जीवन में जो संतरास, घुटन, पीड़ा और अकेलेपन की जो यातना है, सामाजिक जीवन मूल्यों का जो बदलाव है, भौतिकता का जो आग्रह है, इन सब के पीछे नगरीय परिवेश ही मूलतः कारणभूत है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ। आधुनिक लेखिकाओं के नगरीय परिवेश के उपन्यास, डॉक्टर पारुकांत देसाई, पृष्ठ संख्या 12। पैराग्राफ चेंज, जहाँ नगरीय जीवन की महिलाओं की कुछ समस्या है वहाँ ग्रामीण जीवन से संबद्ध स्त्रियों की भी समस्या उनसे कुछ भिन्न प्रकार की है। लाख सुधार आंदोलनों के बावजूद बहुत से दूर दराज के गांव अभी भी अशिक्षा, अंधविश्वास तथा सामंतकालीन अत्याचारों से पीड़ित हैं। अभी कुछ दिन पूर्व के अखबारों में यह समाचार था कि विदर्भ में काली विद्या की आशंका के तहत एक स्त्री को डाकिन करार देते हुए उसे पत्थरों से आहत करके नग्नावस्था में गांव में घुमाया गया। अनेक महिला संस्थाओं में अग्रणी नेता के रूप में रह चुकी प्रमिला दंडवते ने पृष्ठ संख्या 65 एक सर्वेक्षण में बताया कि गांव में पंचायत आदि में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व होता है, परंतु वहां उनके स्थान पर उनके पति, जेठ, बेटे या ससुर ही सारी कार्यवाही करते हैं। राजस्थान के भटेरी गांव की साथिन भवरी बाई पर जो सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी उसमें पुरुषों के दबाव में आकर गांव पंचायत की महिला प्रतिनिधियों ने भी भवरी बाई के खिलाफ गवाही दी थी। पैराग्राफ चेंज, संप्रति गुजरात सरकार के महिला एवं शिशु विभाग द्वारा युवा महिला केंद्र के तत्वाधान में भावनगर की श्रीमती गांधी महिला कॉलेज में आयोजित एक संगोष्ठी में कॉलेज की प्राचार्या श्रीमती धंधुकिया ने अभी इन बदली हुई परिस्थितियों में भी स्त्रियों के साथ जो भेदभावपूर्ण गैर बराबरी का व्यवहार होता है उसका उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में किया था। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, द सोसाइटी बिहेव्ड इनडिफरेंटली टू द फीमेल राइट फ्रॉम इट्स एग्जिस्टेंस इन वॉर्म पर्स एंड डिवाइस ऑफ फोर्टिसाइड वेयर वाइल्डली यूज टू अवॉइड फीमेल चाइल्ड सुइसाइड और फोर्सफुल किलिंग ऑफ वुमेन हैज बिकम डेली अफेयर्स इन आवर कंट्री वाइल 40 लैक्स ऑफ वुमेन इन US सफर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड हेरासमेंट बाय देयर हस्बैंड आउट ऑफ 6 वुमेन 1 मीट्स एन अननेचुरल डेथ देयर इज 1 रेप इन लेस देन एन आवर। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ द टाइम्स ऑफ इंडिया, अर्थ डे, वुमेन्स ग्रीवेंस हाईलाइटेड, ए जे जोशी, दिनांक 14/11/1996, पृष्ठ संख्या 5। इसी संगोष्ठी में भावनगर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की सीरीज भाई तोलिया ने यद्यपि इधर स्त्रियों की जो संवैधानिक हक मिले हैं उसकी बात की थी, किंतु अपने वक्तव्य के अंत में उन्होंने जो परंतु लगाया वह अत्यंत सूचक है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मिस्टर सिरीज तोलिया इलेबोरेटेड वेरियस लीगल प्रोविजंस प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, विडो इज द फर्स्ट राइटफुल पर्सन टू इनहेरिट द इंटायर प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड हैविंग ऑल ऑफ हर स्ट्रेंथ एन असाइडिंग डाउरी एट एनी स्टेज ऑफ मैरिज लाइफ हैज बिकम एन ऑफेंस एंड द हस्बैंड इज लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर द इंडियन पैनल कोड फॉर अ डेथ ऑफ हिज वाइफ विद इन 7 years आफ्टर द सेपरेशन. However, the district judge regret a lack of percent of women change their mind during the proceeding in the court. Inverted comma close. संदर्भ ग्रंथ वही प्रश्न संख्या 5. उपर्युक्त कथन में महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की जो बात है परंतु उनकी पूर्ति शायद ही हो पाती है क्योंकि पुरुष सत्ताक समाज की जकड़बंदी में अनेक दबावों के तहत उसे निर्णय लेने या बदलने पड़ते हैं. वस्तुतः हम लाख सभ्यता शिक्षा विधि विधान और आधुनिकता की बात करें परंतु सहस्त्राधिक वर्षों की जो रूढ़िवादिता है वह कमजोर होने का नाम नहीं लेती. ब्रैकेट में द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ट्रेडिशन के लेखक जेसी हर्स्टमैन ने सच ही कहा था कि जब तक भारत की रूढ़ी आधारित विभावनाएं नहीं बदलेंगी वह आधुनिकता से दूर ही रहेगा. यथा इन्वर्टेड कॉमा ओपन India's road to modernity is likely remain rocky so long as India does not resolve a conceptual conflict embodied in her tradition. Inverted comma close. Sandarbh Granth. Article Krishna Kumar, Brahman and the King, Times of India, Dinang 14/9/1996, Prishth Sankhya 8. Paragraph change. Prishth Sankhya 66. यही कारण है कि विधि विधानों के रहते हुए भी महिलाओं की स्थिति में जो गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए वह नहीं आ पाया. अभी हाल ही में प्रकाशित श्रीमती मृणाल पांडे विचारोत्तेजक पुस्तक परिधि पर स्त्री के निम्नलिखित विचार इस संदर्भ में ध्यातव्य है. इन्वर्टेड कॉमापन भारतीय समाज में तो उनकी ब्रैकेट में स्त्रियों की स्थिति और भी अधिक दयनीय है. कभी कभी भी कोई धर्मगुरु शंकराचार्य आग बबूला हो सकता है. यदि उनकी उपस्थिति में एक स्त्री वैदिक ऋचाओं का पाठ करती है तो वे उठकर चले जाएंगे. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. संदर्भ ग्रंथ परिधि पर स्त्री मृणाल पांडे पृष्ठ संख्या 15. महिलाओं के इस अपमान पर प्रगतिशील महिला समिति संस्था द्वारा धरने से क्या हुआ. न मुसलमान महिलाएं मस्जिद में कुरान पढ़ सकती हैं और न आर्य ललनाएं वेद पुराण. भाड़ में गए संविधान मौलिक अधिकार समता समानता और धर्म की आज़ादी. हम तो ऐसे ही दीक्षा देकर बनाते रहेंगे नाबालिग बच्चों को साधु साध्वी और वृद्ध से वृद्ध साध्वी को भी युवा साधुओं की वंदना करनी ही पड़ेगी. धर्म वही जो हम पुरुषों ने बनाया है. स्त्रियां पूजा करें चुपचाप, उनके लिए मोक्ष का हर दरवाजा बंद. धर्म के विरुद्ध जाकर सुप्रीम कोर्ट भी अगर साहबानों के साथ न्याय करेगी तो हम नया कानून बनवा देंगे. यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के निर्देश देता रहे सुप्रीम कोर्ट. कानून तो हम पुरुषों की संसद को ही बनाना है ना. कितनी महिला सांसद हैं? 36. कितना शोर लेंगी. मत भूलो कि प्रधानमंत्री होते हुए इंदिरा गांधी तक को मंदिर में घुसने नहीं दिया था. ससुरी अरुंधति की हैसियत ही क्या है. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. संदर्भ ग्रंथ परिधि पर स्त्री मृणाल पांडे पृष्ठ संख्या 34-38. पैराग्राफ चेंज. अभिप्राय कि गांव में स्त्रियों की स्थिति और भी शोचनीय है. गांव में पिछड़ी जातियों में उच्च वर्गीय स्त्रियों की तुलना में स्थिति कुछ बेहतर है परंतु वहां भी उनका शोषण गांव के प्रभु सत्ता संपन्न लोगों द्वारा होता है और गरीबी के कारण उनके पुरुष तथा उनका समाज उन अत्याचारों की जिसमें यौनाचार विशेष रूप से पाए जाते हैं चुपचाप सहन कर लेते हैं. प्रस्तुत अध्याय में ग्राम भित्तीय उपन्यासों में नारी के विविध रूपों का विश्लेषण होगा. अतः पहले कुछ एक ग्राम भित्तीय उपन्यासों जिसमें नारी समस्याएं प्रधानतः आई है की संक्षिप्त चर्चा का उपक्रम रखा गया है. पहला पानी के प्राचीर डॉक्टर रामधरस मिश्र ब्रैकेट में 1961. यह डॉक्टर रामधरस मिश्र का प्रथम उपन्यास है. इसमें स्वतंत्रता पूर्व के ग्रामीण परिवेश को चित्रित किया गया है. इस उपन्यास में ग्रामीण जीवन की गरीबी जमींदारों द्वारा गरीब किसानों का शोषण मजदूरों का शोषण कुर्की पुलिस का क्रूर व्यवहार स्त्रियों का नैतिक शोषण अंधविश्वास अवैध यौन संबंध अनमेल विवाह जैसी समस्याओं को समाकित किया गया है. प्रमुखतः यह सुमेश पांडे के पुत्र नीरू की गरीबी को रूपायित करता है, परंतु उसमें नीरू की माँ रूपा, बहन उमा, संध्या, बिंदिया, गेंदा जैसे कई नारी पात्र आते हैं। घर की गरीबी से नीरू तड़प उठता है। इन्वर्टेड कॉमा, उपवास पर उपवास हो रहे हैं। गहने और बर्तन भाड़े पहले ही बनियों के पेट में जा चुके हैं। मुखिया खार खाए बैठा है। कभी भी अपने रुपए के लिए खुराफात कर सकता है। खेत रेहन पड़े हुए हैं। कई साल की मालगुजारी बाकी है। अब की कुर्की होकर रहेगी। नीला विवाह लायक हो रही है। केशव की पढ़ाई का सवाल है। मैं घर में सबसे जेठ लड़का हूँ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ पानी के प्राचीर, डॉक्टर रामदरस मिश्र, पृष्ठ संख्या 135। घर की इस गरीबी के कारण नीरू कच्ची उम्र में गजेंद्र सिंह के यहाँ 2 रुपए माहवार पर नौकरी करता है। पृष्ठ संख्या 67। यह अकेले नीरू की गरीबी की बात नहीं है, पूरा गांव दरिद्र है। जाड़े में खाने को कुछ नहीं होता तो बथुआ साग खाकर जीते हैं। भूख मिटाने के लिए लोग खेतों में फसलों की चोरी करते हैं। गरीबी के कारण बच्चों को सुबह शाम गंजी ही खानी पड़ती है। नीरू का भाई केशव माँ से रोते हुए कहता है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, न चावल न रोटी न खिचड़ी, बस गंजी। तब रूपा भी रोते हुए कहती है इन्वर्टेड कॉमा ओपन, बेटा घर में खाने को होता तो मैं देती नहीं क्या? तुम लोगों से भी प्यारी चीज दुनिया में हो सकती है। गरीबी जो न कराए। बेटा देखो, तुम्हारा भैया कमाने गया है। तुम ही लोगों के लिए तो मेरा लाल इस कच्ची उम्र में काले पानी की सजा भुगत रहा है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ पानी के प्राचीर, डॉक्टर रामदरस मिश्र, पृष्ठ संख्या 149। होली के उत्सव पर गांव के अन्य लोग जब पूरी सुहारी खाते हैं, तब राम दीन जैसे न जाने कितने लोग केवल चनों पर निर्वाह करते हैं। पैराग्राफ चेंज। घर की इस स्थिति के लिए सुमेश पांडे जिम्मेदार है। अपने आलसीपन, दब्बूपन और नामर्दगी के कारण कुबेर पांडे जैसे समाज शोषकों के भी शिकार हो जाते हैं। अतः एक बार जब सुमेश बेकसूर बेटे नीरू पर हाथ उठाते हैं, तब रूपा दहाड़ उठती है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, जवान बेटे पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? जिंदगी भर अपने नामर्द बने रहे, हर एक आदमी के सामने दुम हिलाते फिरे, जमीन जायदाद छोड़ते गए और अब बच्चों को नामर्दगी का पाठ पढ़ाते हो। अच्छा, समझदार मर्द चूड़ी पहन लो और घर में घुसकर बैठो, और नहीं तो मुखिया महाराज के पैर धोकर पियो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ पानी के प्राचीर, रामदरस मिश्र, पृष्ठ संख्या 41-42। पैराग्राफ चेंज। नीरू की बहन लीला अभी अविवाहित है। उसकी दूसरी बहन उमा स्वार्थी, नामर्द और सास ससुर के क्रूर व्यवहार के कारण जीवन की लीला समाप्त कर चुकी है। गांव की एक लड़की गेंदा बूढ़े पति के मर जाने पर विधवा होकर घर बैठ गई है। गांव में उसके कई व्यक्तियों से शारीरिक संबंध है। माँ के हर्जाईपन के कारण बिंदिया अपने पति का साहचर्य नहीं भोग पाती। हार कर उसका पति दूसरा विवाह कर लेता है। बिंदिया पति विहीन होकर गांव के मनचले छोकरों की कठपुतली बन जाती है। बैजू नामक एक युवक का सहारा मिलता है, परंतु गांव और समाज वालों से यह देखा नहीं जाता। कुछ लोग मिलकर गुलाबी के पति को मार डालते हैं। शारीरिक वासना पूर्ति के लिए गुलाबी अपने बहनोई और बैजू का सहारा लेती है। पैराग्राफ चेंज। गरीबी, रीति रिवाज और परंपरा के कारण नीरू अपनी प्रेमिका संध्या से विवाह नहीं कर सकता। एक काली कलूटी पत्नी उसके गले मर दी जाती है। संध्या शहर में जाकर इतनी बदल जाती है कि ग्रामीण वातावरण से घृणा करने लगती है। एक स्थान पर वह नीरू से कहती है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, गांव में क्या रखा है नीरू? देखो ना, सखियों के नाम पर गेंदा चमेली जैसी आवारा छोकरियां। गांव के लौंडे हैं जो बिंदिया चमाइन के पीछे पड़े रहते हैं और गांव की लड़कियों पर बुरी निगाह गड़ाए फिरते हैं। गांव के लोग चोरी करते हैं, खेत उखाड़ते हैं, घर फूंकते हैं, चुगली करते हैं। ऐसे गांव में क्या रखा है? और तो और, दिल बहलाने के लिए कोई तरीका नहीं। किसी से बात करो तो वह दूसरों की शिकायत करता है, औरतें हैं तो उन्हें एक दूसरे की पोल खोलने में मजा आता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ वही पृष्ठ संख्या 170, पैराग्राफ चेंज पृष्ठ संख्या 68। परंतु इन सब के बावजूद मिश्र जी ने इस उपन्यास में गांव के तीज त्योहार, बजते नगाड़े ढोल चौताल गालियों रंगों की बौछार, कबीर अबीर होली का दहन, पांडे पुरवा और पकड़िया गांव के बच्चों की मुठभेड़ जैसे ग्रामीण चित्र खींचे हैं, तो दूसरी तरफ रामधनी तेली जैसे ओझा गांव की बहु बेटियों की इज्जत का पर्दाफाश करने भूत प्रेत चुड़ैल जिन बरम इत्यादि को बुलाते हैं। गांव की बहु बेटियां अभुआती हैं और भूत प्रेत की भाषा में बोलती हैं। इस प्रकार गांव के रीति रिवाज, पर्व त्योहार, लोकगीत, अंधविश्वास, रूढ़िया आदि का यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। दूसरा, जल टूटता हुआ, डॉक्टर रामधीरज मिश्र ब्रैकेट में 1969। इसमें भी गोरखपुर जिले के पांडेपुर गांव को ही लिया गया है। एक प्रकार से यह पानी के प्राचीर का ही विस्तार है। जहाँ पानी के प्राचीर में स्वाधीनता पूर्व की कथा को लिया गया है, वहाँ प्रस्तुत उपन्यास में स्वाधीनता पश्चात के गांव की स्थिति को लेखक ने विश्लेषित किया है। आज़ादी के बाद ग्रामीण जीवन में बहुत जटिलताएं आई है। राजनीति की काली नागिन सी छाया यहाँ भी मंडराने लगी है। प्राकृतिक नैसर्गिकता और स्वाभाविकता का लोप हो रहा है। ग्रामीण मूल्य टूट रहे हैं और शहरी मूल्यों का दबाव बढ़ रहा है। ग्रामीण जीवन के तीज त्योहार, उत्सव, मेले, ठेले, वह सब फीके पड़ रहे हैं। डॉक्टर पारुकंद देसाई ने इसे टूटते और बदलते मानवीय संदर्भों की सार्थक कहानी बताते हुए स्वातंत्र्योत्तर मोह भंग को उसका मुख्य थीम बताया है। पैराग्राफ चेंज इस उपन्यास में टूटते हुए बांध के जल को प्रतीक के रूप में लिया गया है। पांडेपुर गांव का यह बांध कच्चा होने के कारण जब भी बाढ़ आती है टूट जाता है और उस जल प्रवाह को रोकना मुश्किल हो जाता है। यह टूटता हुआ जल जीवन निर्मूल्यों का प्रतीक है, जिसके प्रवाह में जीवन के सही आदर्श मूल्य बह जाते हैं। सतीश, अमलेश जी, मास्टर सुगन, कुंजू, मास्टर उमाकांत, पाठक जैसे लोग, महीम सिंह, दीनदयाल, दल सिंगार, मगुआ जैसे राजनीतिक अवसरवादियों के सामने ठहर नहीं पाते। न्याय प्रियता एवं आदर्श प्रियता के कारण गांव के स्थापित हितों के साथ सतीश का टकराव होता है, परंतु उसे निराशा ही हाथ लगती है। 574 पृष्ठ के इस बृहत्काय उपन्यास में गांव के मेले ठेले, उत्सव, बाढ़, बीमारी, अस्पताल के अभाव में असामयिक निधन की घटनाएं, झगड़े, फसाद, खून खराबा, कचहरी अदालत, झूठी गवाहियां, चुनाव के हथकंडे, चोरी, पारस्परिक ईर्ष्या के कारण एक दूसरे के खेतों को काटना कटवाना, प्रतिस्पर्धियों को गुंडों द्वारा पिटवाना, चकबंदी और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, स्त्री पुरुष के अनैतिक संबंध और इन सब के बीच पनपती प्रेम कहानियां आदि को इस तरह आकलित किया है कि ग्रामीण जीवन के बहुआयामी ताने बाने बुनते चले गए हैं। पैराग्राफ चेंज इसमें शारदा बद्मी, जमुना, गीता, पार्वती, लवंगी, डलुआ आदि नारी पात्र आए हैं। डलुआ एक विपुल वासनावती स्त्री और दल सिंगार मंगुआ के अलावा गांव के अनेक लोगों से उसके अवैध संबंध हैं। पार्वती एक ब्राह्मण कन्या है जो अपने हलिया हंसिया नामक एक चमार से अविवाहित स्थिति में शारीरिक रूप से जुड़ी है। मास्टर सुग्गन न्याय प्रिय है। पृष्ठ संख्या 69। सतीश के स्थान पर महीप सिंह का साथ देते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं महीप सिंह अपने सूत्रों के प्रयोग से उनका तबादला तराई में न करा दे। उनकी समस्या यह है कि तबादला होने पर पत्नी जमुना और जवान पुत्री गीता अकेले कैसे रहेंगे और उनकी जमीन का क्या होगा। धनपाल और बनावरी सगे भाई हैं, परंतु धनपाल बराबर यह चाहता है कि उसका भाई बनवारी मूर्ख और आवारा बना रहे ताकि जमीन का सारा फायदा उसे ही मिले। बनवारी की पत्नी जेठ की इस रूप को अच्छी तरह समझती है और विरोध भी करती है, परंतु धनपाल बनवारी को चढ़ाकर जब तब उसको पिटवाता रहता है। कुंजू बदमी की प्रेम कहानी भी उपन्यास की एक मुख्य कथा है। कुंजू ब्राह्मण ठाकुर है जबकि बदमी चमारिन है, परंतु उनका प्रेम संबंध अनैतिक नहीं रहता, क्योंकि कुंजू भरी सभा में साहस के साथ स्वीकार करता है कि बदमी के पेट में जो बच्चा है वह उसका है। दीनदयाल की पुत्री शारदा मास्टर उमाकांत पाठक को प्रेम करती है। उमाकांत और शारदा की यह प्रेम कहानी मैला आंचल में निरूपित डॉक्टर प्रशांत और कमला की प्रेम कहानी का स्मरण दिलाती है। पुत्री वात्सल्य के कारण दीनदयाल को छुपना पड़ता है और यह प्रेम भी साफल्य को प्राप्त होता है। प्रस्तुत उपन्यास में लवंगी नामक एक तेज तर्रार चमार कन्या का चित्र लेखन भी है। उपन्यासकार का यह एहसास स्वाभाविक और प्रामाणिक लगता है कि इन्वर्टेड कॉमा अपन गांव टूट रहा है, मूल्य टूट रहे हैं, सत्य टूट रहा है, कोई किसी का नहीं, सब अकेले हैं, एक दूसरे की तमाशाई है, वही क्यों सबका ठेका लिए फिरे। गांव टूट रहा है मगर नहीं, एक नया गांव भी बन रहा है, वह है किसानों मजदूरों का गांव। जगपतिया का खेत नहीं कटवा सके महीप सिंह, वह अकेला नहीं था, उसके साथ अनेक हाथ उठ गए थे मरने मारने को। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ जल टूटता हुआ डॉक्टर रामदर्श मिश्र पृष्ठ संख्या 389 पैराग्राफ चेंज। सतीश के इस आत्म प्रलाप से विघटन के भीतर से भी एक नए समाज के निर्माण का संकेत मिलता है। लेखक भविष्यत संभावनाओं के प्रति आस्थावान है।